नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में श्री कुमार को शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, कांग्रेस नेता जयराम रमेश और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। राज्यसभा सदस्य के रूप में श्री हरिवंश का कार्यकाल कल समाप्त हो गया था। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री हरिवंश को मनोनीत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री नीतीश कुमार देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं और सुशासन को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की हर जगह सराहना होती है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को भी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने पर बधाई दी है। जनगणना 2027 के पहले चरण में अब तक 5,72,000 से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया है। भारत के महापंजीयक ने कहा कि ये जनगणना के लिए डिजिटल पहल में बढ़ती जन भागीदारी को दर्शाता है। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था। स्वगणना सुविधा 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति जनगणना पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने याचिका खारिज कर दी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से जले हुए नोटों के ढेर मिलने के बाद उनके खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई चल रही है। पिछले वर्ष 14 मार्च को नई दिल्ली स्थित उनके आधिकारिक आवास से जले हुए नोटों का एक ढेर मिलने के बाद न्यायमूर्ति वर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में कहा गया है कि राज्य में सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर 7वां वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। घोषणा पत्र जारी करते हुए श्री शाह ने कहा कि जनता भयभीत और निराश है और वो दिल से बदलाव चाहती है। श्री शाह ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता में आने के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करेगी।
भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो वो सुनिश्चित करें।
पश्चिम बंगाल में 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है। इस चरण में 142 सीटों के लिए मतदान कराया जाएगा। 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा क्षमता में सबसे अधिक वार्षिक वृद्धि दर्ज करने की भारत की उपलब्धि पर एक लेख साझा किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकाशवाणी समाचार की खबर को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बल दिया है। इससे पहले केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की थी कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 45 गीगावाट की सबसे अधिक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर्ज की है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।